الحمد لله الذي أحب.
وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم تسہیل بہشتی زیور میں سے کتاب السلوک والاحسان کا موضوع پڑھ رہے ہیں، جس میں اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج کا ذیلی موضوع چل رہا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا آغاز جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم ولا الی صورکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہری جسم اور تمہاری صورتوں کی طرف، ولیکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف. ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں انسان کی نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، اور اس دل میں جیسی نیت ہو ویسے اس کے اعمال ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اہم جو ہے وہ یہ چیزیں ہیں، ظاہری معاملات کم اہم ہیں اور باطنی معاملات زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے، انسانوں کے لیے برعکس ہوتا ہے، انسانوں کو جو ہے وہ ظاہر کا معاملہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن باطن کا معاملہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ ظاہر ہی کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی. تو اب اس میں سے اللہ تعالیٰ زیادہ اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ باطن کو، اور کم اہمیت ظاہر کو. تو یہ جو اخلاق ذمیمہ تھے، ان میں سے ہم نے پہلے دو اخلاق پچھلی کلاس میں پڑھ لیے تھے، زیادہ کھانے کے حرص اور ان کا علاج، اس کا علاج، اور پھر اس کے بعد زیادہ بولنے کی حرص اور اس کا علاج. حرص کہتے ہیں لالچ کو، یعنی ایک طلب ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے انسان کے دل میں کسی چیز کی، اسی کو لالچ اور حرص کہتے ہیں. تو زیادہ بولنا یہ ایک برا خلق ہے، یعنی اٹس اے بیڈ مینر. ٹھیک ہے، تو انسان کے نفس میں جو ہے نا وہ اس کی طلب ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے کہ میں زیادہ بولوں، میں بولتا رہوں. ٹھیک ہے، خاموشی اس کو پسند نہیں ہوتی، خاموشی اس کو اچھی نہیں لگتی. خاموشی کے بارے میں محاورہ تک مشہور ہو گیا کہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ خاموشی کوئی بری چیز ہے، بلکہ خاموشی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، خاموشی اچھی چیز ہے، اور خاموشی میں نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو خاموش کرنا، بلکہ خاموش ماحول کے اندر بھی جو ہے نا وہ زیادہ وقت گزارنا، یہ انسان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اگر وہ اس خاموش ماحول کے اندر رہ کر کے اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے، اپنے پروردگار کے ساتھ جڑا رہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ خاموش ماحول میں رہا ہوا ہے لیکن شیطان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خاموشی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، خاموشی کے ساتھ شیطانی خیالات کو سوچ رہا ہے، ویسی خاموشی اچھی نہیں ہوتی. بلکہ کون سی خاموشی اچھی ہوتی ہے؟ کہ جس کے اندر کے پروردگار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ اگر وہ خاموش ماحول میں اس کے لیے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اچھی آوازوں کے ماحول کے اندر رہے، اچھی آوازوں کے ماحول میں رہے. ٹھیک ہے، اگر خاموشی بری خاموشی ہے، شیطان کے ساتھ راز و نیاز اور گناہوں والا معاملہ، تو اس خاموشی سے بہتر یہ ہے کہ اچھی آوازوں کے ٹھیک، جیسے کہ اللہ کا ذکر یا نیکی کا تذکرہ، قرآن مجید کی تلاوت. ٹھیک ہے، اچھے اچھا علمی موضوع کے اوپر کوئی گفتگو، یہ بھی تو آوازیں ہیں نا. یہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ خاموشی تو نہیں ہے، یہ تو آواز ہے. ذکر جو کیا جاتا ہے زبان سے، یہ آواز ہے. بیان جو ہوتا ہے، علمی موضوع ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے، یہ آواز ہے، یہ خاموشی تو نہیں ہے. ساری چیزیں تو یہ والی آواز بری خاموشی سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، और सबसे बेहतर तो वो खामोशी है जो कि अल्लाह ताला के जिक्र के साथ गुजर रही हो और फिक्र के साथ गुजर रही हो। जिक्र और फिक्र, ठीक है, जिक्र का मतलब होता है कि आप याद कर रहे हैं, किसी का तज़किरा कर रहे हैं दिल ही दिल के अंदर, ठीक है, कल्बी जिक्र। और एक चीज होती है फिक्र, फिक्र का मतलब कि आप सोच रहे हैं किसी अच्छी चीज के बारे में, कोई अच्छा प्लान कर रहे हैं, कोई अच्छी जो है वो आप यानी किसी के दुख दर्द को जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जिक्र और फिक्र वाली खामोशी, ये असल में मकसूद है हमारा। मुंह बंद करना मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से फिर क्योंकि हम मुंह नहीं बंद कर रहे होते हैं, तो इस वजह से लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, क्योंकि अगला बंदा जो लड़ाई करने के लिए आता है ना, तो वो फिर जुबान से अपनी लड़ाई को शुरू करता है, ठीक है। यानी मैदान जंग की लड़ाई तो हाथ पैर और हथियारों से शुरू होती है, लेकिन घरों की लड़ाई जो है ना, ये हाथ पैर से शुरू नहीं होती, ये शुरू कहाँ से होती है, जुबान से शुरू होती है, ठीक है। और फिर अगर खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए, तो फिर हाथ पैर से भी लड़ाई की नौबत आती है, या हथियार भी उठा लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इब्तिदा जो है वो घरों की लड़ाई की जुबान से होती है। तो ये लड़ाई जो है ना, फिर बढ़ती कैसे है कि जब दूसरी तरफ से भी जुबान का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, जब दूसरी तरफ से भी मुंह दर मुंह जवाब दिया जाना शुरू हो जाए, तब ये लड़ाई बढ़ती है और ये संगीन सूरत अख्तियार कर जाती है, हत्ता के फिर मार पिटाई तक भी नौबत आ जाती है, या तलाक तक नौबत आ जाती है, ठीक है। तो इस लड़ाई से बचने का तरीका क्या है कि अगर एक तरफ से जुबान इस्तेमाल की जा रही है, तो दूसरी तरफ से जुबान ना इस्तेमाल की जाए, दूसरी तरफ से जुबान ना इस्तेमाल की जाए, ठीक है। तब जो है ना, ये बढ़ने की बजाय घट जाती है। ज्यादा से ज्यादा वो आएंगे, बुरा भला कहना शुरू करेंगे, कितनी देर तक कहते रहेंगे, बिलाखिर जो है वो थक जाएगा इंसान, बिलाखिर जो है कहेगा भाई ये तो इसके ऊपर तो कोई असर नहीं होता, तो कब तक बोलता रहूं मैं, ठीक है ना। तो वो चुप हो जाएगा बिलाखिर। लेकिन होता क्या है कि औरतें, चूंकि औरतों की क्लास है, तो उस वजह से औरतों से ही मुखातिब होंगे ना भाई, अभी आप मर्द तो नहीं है, तो औरतें जो है ना वो आगे से, यानी वैसे तो खुद ही शुरू करती हैं अक्सर औकात में, लेकिन अगर खुद खुद ना भी शुरू कर रही हो, तो उन्होंने आके कुछ कहा और इधर से इन्होंने जवाब देना अपने ऊपर वाजिब कर लिया, नहीं जवाब दिए बगैर कैसे हो सकता है ना, और उसको हक समझ करके, ये तो हक परस्ती है, और जो है वो पता नहीं क्या है, फलाना ढिमकाना, अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन लेकर के फिर जो है वो एक फाइटिंग शुरू हो जाती है जुबान पे। तो इसी वजह से वो एक लतीफा भी मशहूर है, आपने यकीनन अब तक तो सुन ही लिया होगा, हमारी क्लासों में भी कई दफा सुनाया जा चुका है, कि एक जो है वो खातून पीर साहब के पास गई कि पीर साहब घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप कोई तावीज़ दे दीजिए, ठीक है। तो थोड़ी देर जब इन्होंने बातचीत करी ना, तो पीर साहब को पता चल गया कि ये इनका मसला क्या है, क्यों घर में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि इनकी ये चुप ही नहीं होके दे रहे हैं। हमारे पास भी एक दफा एक आई थी, पता नहीं आपकी क्लास में है कि नहीं, वो आई थी अपने मसले लेकर के, लेकिन वो चुप ही नहीं हो यानी बोले चले जाए, बोले चले जाए, बोले चले जाए। मैंने उनको बड़ी मुश्किल से जो है ना, वो बीच में अपनी कोई बात करी, 10 मिनट तक तो सुनता रहा ना उनको, शोर भी बैठे हुए हैं साथ, ठीक है, 10 मिनट तक तो सुनता रहा, फिर मैंने थोड़ी सी कुछ कहने की कोशिश करी कि भाई ऐसा ऐसा नहीं वैसा है, लेकिन ही शी डिड नॉट लेट मी टॉक, उन्होंने मुझे बात ही नहीं करने दी। वो फिर जो है ना शुरू हो गई, और फिर बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बिलाखिर मेरी बस हो गई। मैंने कहा ये देखें, अब ये आपका जो मसला है ना, कि आप कहती हैं कि वो मुझसे बात नहीं करते, अच्छा उनका उनका उनकी शिकायत क्या थी कि शौहर उनसे बात नहीं करते। मैंने कहा आप उनको बात करने देंगी तो वो बात करेंगे ना, आप तो मेरे पास आई हुई है जिसको कि सो कॉल्ड आप शेख कहती हैं, है ना, अपना मसला का हल आप लेने के लिए आई हैं, लेकिन आप मुझे भी बात नहीं करने दे रही, राइट, आप तो मुझे भी बात नहीं करने दे रही, तो ये शौहर फिर किस खेत की गाजर मूली है, इनको आप कहां से बात करने देती होंगी। एंड शी लिटरली शी डिड नॉट रियलाइज व्हाट शी इज डूइंग, उनको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कर क्या रही है, कॉन्स्टेंटली बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, राइट। अगर क्लास में मौजूद होंगी तो आप पहचान गई होंगी, उम्मीद है कि आप पहचान गई होंगी कि किसके बारे में बात हो रही है, ऐसा होता है, ठीक है। तो उन पीर साहब को भी अंदाजा हो गया कि ये खातून जो है ना, ये चुप रहने वाली है नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको एक वजीफा लिख करके दे देता हूँ, उन्होंने कागज के ऊपर वजीफा लिख करके उनको दे दिया और उनको कहा कि जी अच्छा, अब खातून पूछती था ना जी, इस वजीफे को इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत से सवाल आते हैं जी, इसको कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वगैरह वगैरह, ठीक है। उन्होंने पूछा जी अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, उन्होंने कहा इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि आप इसको गोल करके जो है ना एक बॉल बना लें, और जब लड़ाई नजर आ रही घर में है ना, तो जैसे ही लड़ाई का माहौल पैदा हो आप फौरन इस वजीफे को जो है ना मुंह के अंदर रख लें, ये तरीका है इस वजीफे को इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो वो खातून जो है वो उनका अच्छा ठीक है जी माशाल्लाह, है ना। तो वो चली गई और कुछ अरसे के बाद वापस आई और उन्होंने कहा कि जी हजरत आपने क्या जबरदस्त वजीफा दिया था, मेरे घर में तो सारी लड़ाइयां ही खत्म हो गई हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी अच्छा आपने वजीफा इस्तेमाल किया था, जी मैंने बिल्कुल पाबंदी से वजीफा इस्तेमाल किया था, जब कोई लड़ाई होती मैं उसको अपने मुंह में रख लेती। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही चाहता था, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको मुंह में रख लेती तो आपसे जो है वो बोला ही नहीं जाए, ठीक है। तो वाकई यही वजीफा है, अब आप लोगों तक के ऊपर तो राज खुल चुका है, तो अब तो आपको नहीं वजीफा ये वाला दिया जा सकता, लेकिन अगर थोड़ी सी अपनी अकल और अपने शऊर को इस्तेमाल करें तो अपनी जुबान को जो है वो काबू में रखें, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बोल देती हैं आगे जाकर के उल्टी सीधी चीजें, और फिर उसके बाद शौहर साहब पहले ही वो गुस्से के मरीज हैं, पहले ही उनको जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ की टेंशन है सवार हैं। शौहर को जो है वो बहुत जगहों से लोग ना उनकी टांगे खींच रहे होते हैं, आप तो एक घर में होती हैं ना, ठीक है ना। मुसीबत ये है कि आज जो है ना वो इंटरनेट का जमाना है और फोन का जमाना और सोशल मीडिया, फ्री फोन, अब तो पहले तो फोन के ऊपर पैसे लगते थे, अब तो फ्री फोन है सारा का सारा, सिर्फ जो है वाईफाई का पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो घर में रह करके दुनिया से कटना मुमकिन ही नहीं रहेगी अब औरत के लिए, ठीक है ना। घर में है हर वक्त अम्मी से बात, हर वक्त अब्बू से बात, हर वक्त भाई से बात, हर वक्त बहन से बात, हर वक्त दोस्त से बात, हर वक्त फलानी से बात, तो ये घर में नहीं रह रही, ये तो पूरी की पूरी दुनिया में रह रही है सारा वक्त, ठीक है ना। तो हमने जो है ना वो अपने घर की प्राइवेसी, अपने घर का जो आराम और सुकून था, औरत को जो अल्लाह ताला ने वदियत फरमाया था, औरत ने खुद अपने सुकून को जो है वो गारत कर लिया। अब आखिर से बोलती हैं कि जी हमें सुकून नहीं है, हमसे कोई काम नहीं होता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। भाई आप अपने घर की होकर के रहें तब आपसे काम होगा ना, आप तो पूरी दुनिया को जो है वो घर के अंदर दाखिल करी हुई है, तो कैसे आपसे फिर घर घर का काम होगा। फिर आप जो है वो जो जो टाइम आपकी औलाद को चाहिए तो वो टाइम अपनी औलाद को कैसे देंगी, जो शोहर को चाहिए वो कैसे देंगी, जो घर की सफाई सुथराई और मामलात को चाहिए वो आप टाइम कहाँ से लेकर के आएंगी, 24 घंटे से ज्यादा टाइम तो नहीं आपके पास है कि नहीं है, नहीं है ना। तो वो टाइम जो उठा करके आपने दे दिया आप दोस्त को, सहेली को, अम्मा को, अब्बा को और भाई को और बहन को, ठीक है ना, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से आएगा आपके पास, तो फिर काम कहाँ से होंगे आपके, ठीक है। तो भाई अल्लाह ताला ने औरत को घर वाली बनाया था, उसको घर में रहकर सुकून से रहना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन मर्द को अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया, मर्द के लिए अल्लाह ताला ने बाहर का काम रखा है, बाहर की जिम्मेदारियां रखी हैं। अब जब वो घर से बाहर जाता है ना तो बाहर जो है ना वो हर किस्म के लोग होते हैं और हर किस्म के हालात होते हैं, राइट। वो अपने घर से बाहर कदम निकालता है, मोहल्ले वालों से उसको सामना पड़ता है, उसको सड़क पे लोगों से सामना पड़ता है, फिर उसको बाजार के लोगों से सामना पड़ता है, फिर उसको जॉब के लोगों से सामना पड़ता है, फिर उसको अपने कस्टमर से जो कि उसके जॉब से ताल्लुक रखने वाले होते हैं उस उनसे उनको सामना पड़ता है, फिर उसको जो है वो दूसरे रिश्तेदारों से सामना पड़ता है, उसको मुलाकात भी अपने अम्मा अब्बा से करनी है क्योंकि उसके ऊपर उसकी माँ का सबसे ज्यादा हक है, फिर उसके बाप का दूसरे नंबर पर हक है, बेगम का हक तो घर वालों का हक तो उसके बाद आता है ना, सबसे ज्यादा हक तो माँ का है, तो उसको तो अपनी माँ के पास जाना है। बीवी के ऊपर किसका हक ज्यादा है, माँ का हक ज्यादा है, बाप का हक ज्यादा है या शौहर का हक ज्यादा है, शौहर का हक ज्यादा है ना या नहीं है। तो शौहर तो उसके घर में आएगा रात को, तो वो जो हक वक जितना भी है वो सारा का सारा घर के अंदर वो निपटा लेगी, लेकिन शौहर के ऊपर तो माँ बाप का हक ज्यादा है ना, अल्लाह ने रखा है ना, हमने तो नहीं रखा, पीर साहब ने, मौलवी साहब ने तो नहीं रखा, ये उनके ऊपर तो माँ बाप का हक ज्यादा है ना। तो अब उनको माँ बाप से भी जो है वो रिलेशनशिप रखनी है और ताल्लुक रखना है और उनकी जिम्मेदारी, उनकी जरूरियात को पूरा करना है इसने, तो इसका कहाँ कहाँ इसकी टांगे फंसी हुई होती हैं आप तस्वुर नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ इसकी टांगे फंसी हुई हैं। तो ये जो है ना ये इंतहाई मुश्किल हालत में होता है, ये मर्द जात जिसको कहते हैं ना, ये इंतहाई मुश्किल हालत में होता है। तो इस वजह से जो है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है इसके ऊपर, इसी वजह से आजकल कई दफा मैं बात बता चुका हूं कि बाकायदा रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर जो मर्द है ना, वो खुदकुशियां बहुत ज्यादा करते हैं, औरतें नहीं करती खुदकुशियां, या बहुत कम है शराह औरतों में खुदकुशी की, मर्दों में खुदकुशी की शराह बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के की बात कर रहा हूं, डॉन के अंदर ये खबर छपी थी, कई साल पहले की बात कर रहा हूं, अब तो पता नहीं कितना बढ़ चुका होगा ये तो मैं 8 साल पुरानी बात कर रहा हूं, डॉन के अंदर ये स्टैटिस्टिक्स, बल्कि 8 से भी 7 ज्यादा साल शायद। तो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है मर्द के ऊपर कि वो खुदकुशी कर लेता है, वो बीमारियों का शिकार हो जाता है इस टेंशन की वजह से, कामकाज के थकन की वजह से खाली नहीं, जहनी टेंशन दबाव की वजह से वो नफसियाती और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाता है। अब अगर घर के अंदर आकर के उसने बेगम साहिबा के सामने कुछ जो है वो कह भी दिया ना, बेगम साहिबा आगे से तुर्की बतुर्की है ना, बिल्कुल उन्होंने जो है वो बराबर की फाइट देनी होती है अपने शौहर को। मेरे ऊपर भी बड़ी टेंशन है, मैं भी बच्चे संभाल रही हूं, मैं भी जो है वो खाना बनाती हूँ, मैं भी जो है वो सफाई करती हूँ, राइट। तो इस वजह से मैंने भी जो है वो बराबर की जो है वो आपके साथ फाइट करनी है, ठीक है। तो फिर आगे से तलाक पड़ती है, फिर उसके बाद जो है वो तलाक याफ्ता बेगम के तौर पर जिन घर में रह रही होती हैं, क्योंकि जब तलाक पड़ जाती है तो उसके बाद अलग हो जाना कोई आसान काम है? उसके बाद तलाक को इनवाइट करना तो बड़ा आसान काम है, तलाक को इनवाइट करना तो बड़ा आसान काम है। क्या करना होता है? ज्यादा से ज्यादा यही बोलना होता है ना, आ बैल मुझे मार, राइट, यही बोलना होता है ना, आ बैल मुझे मार। आगे से बैल साहब जो है वो पहले गुस्से के अंदर, उन्होंने तो आपको मारना शुरू कर देना है, ठीक है। लेकिन तलाक के बाद जुदा हो जाना, मुआमलात को अलग कर लेना, अंदाजा है कितना मुश्किल काम होता है ये। आप खुदा ना खासा किसी के ऊपर ये वक्त पड़ जाए, तस्वुर करके जरा मुराकबा करें इस वाले कैफियत का, निकल जाएंगे आप उस घर से, छोड़ देंगे सारा कुछ अपना, तो नहीं करती फिर। अब उसी शौहर के साथ जो कि अब शौहर नहीं रहा, बाकी जिंदगी हराम के साथ हराम गुजार रही होती हैं, हराम जिंदगी गुजार रही होती हैं एक गैर मर्द के साथ। ये नौबत क्यों आई कि जी इनको जो है ना वो अपना जुबान जो है वो काबू में नहीं है इनकी, राइट। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने तो कोई 100 साल पहले जो है ये किताब लिखी थी, लेकिन इस वक्त जो हालात मजीद आगे जा चुके हैं ना, उसका तस्वुर नहीं कर सकते हम क्या चल रहा है इस वक्त घरानों के अंदर। तो खुद भी इन बातों को समझें और आगे भी समझाएं, पता नहीं और कितने लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली हैं, शायद आपके समझाने के ऊपर उसकी जिंदगी बच जाए। दुनिया की भी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी उससे ज्यादा अहम है, क्योंकि हराम की जिंदगी गुजारेगी ये औरत उस मर्द के साथ तो आखिरत गई इसकी, राइट। किसी को एतराज हो उसके ऊपर या कोई और सवाल हो? पिछली दफा तो बहुत सवाल कर रही थी खवातीन, अभी कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद फिर गुस्सा और उसका इलाज, ठीक है। तो गुस्से और उसके इलाज के बारे में फरमाते हैं कि गुस्से में अकल ठिकाने नहीं रहती और अंजाम सोचने का होश नहीं रहता। यहां पर जिस गुस्से की बात हो रही है, ये वो वाला गुस्सा है कि जो के रूहानी अमराज, यानी गुस्सा ही एक रूहानी मर्ज है किसी शख्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर उस वाले गुस्से की बात हो रही है। एक दूसरे भी किस्म का गुस्सा होता है, वो गुस्सा ये होता है कि इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, तो उसमें तकब्बुर आ जाता है, वो अपने आप को दूसरों से बड़ा और दूसरों को अपने से घटिया समझता है। तो अब जो है ना, जब घटिया लोगों से, कमतर लोगों से कोई गलती हो जाती है, तो ये जो है ना फिर उसके ऊपर गुस्सा निकालता है। ये जो गुस्सा निकालता है ना, ये गुस्सा वो वाला गुस्सा नहीं होता जो रूहानी बीमारी वाला गुस्सा होता है, ये तकब्बुर होता है, तकब्बुर का इजहार होता है खाली, है बस, ये सिर्फ तकब्बुर का इजहार होता है, ठीक है ना। मैनिफेस्टेशन ऑफ प्राइड, इट्स नॉट एन एक्चुअल स्पिरिचुअल डिजीज इन ऑफ इटसेल्फ, इट्स नॉट, ठीक है। तो तकब्बुर का इजहार ये एक ये बाहर गुस्सा नजर आ रहा होता है लेकिन ये गुस्सा नहीं होता। असल में गुस्सा क्या होता है कि जिसका कि हजरत ने यहाँ पे जिक्र किया है कि अकल ठिकाने नहीं रहती, बिल्कुल सोचने समझने का, यानी जिसको कहते हैं ना वो सर गरम हो जाता है, ठीक है, आंखों के सामने अक्सर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पर्दा आ गया आंखों के सामने, क्यों, यानी एक होता है ना जैसे कि वो किसी का बीपी बहुत हाई हो जाए ना, अगर तो बीपी हाई होने के बाद जिस किस्म का कैफियत होती है ना इंसान के ऊपर, तो ये वो वाली कैफियत होती है, गुस्से वाली, ठीक है। तो फरमाते हैं कि इसलिए जुबान से भी मौका बे मौका बात निकल जाती है और हाथ से भी ज्यादती हो जाती है। हमारे मशायख फरमाते हैं कि औरत की जुबान चलती है और मर्द का जो है वो हाथ चलता है। इसलिए गुस्से को काबू में रखना चाहिए और उसको रोकने का तरीका ये है कि जिस पर गुस्सा आया है उसके सामने से फौरन हट जाए, ठीक है, यानी जगह ही छोड़ दे अपनी, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, अपनी अपनी लोकेशन को चेंज कर ले, ठीक है। और फिर उसके बाद सोचे कि जिस कदर ये शख्स मेरा कसूरवार है इससे ज्यादा मैं अल्लाह ताला का कसूरवार हूँ, और जैसा मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी खता माफ कर दें ऐसे ही मुझे भी चाहिए कि मैं उस शख्स का कसूर माफ कर दूं, और जुबान से आउज बिल्ला बार बार पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है हजरत के अल्फाज से कि ये तो तकब्बुर वाली बात कर रहे हैं कि उससे खता हो गई तो इस वजह से उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, नहीं, ये उस वाले गुस्से की बात नहीं कर रहे जो कि तकब्बुर का इजहार होता है, बल्कि ये जो गुस्सा है ना ये किसी बड़े के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है ना, जिसको आप अपने से बड़ा समझते हैं, जिसको आप अपने से जो है वो ज्यादा इल्म में और ज्यादा तकवा में और ज्यादा दुनियावी एतबार से भी बड़ा समझते हैं, ठीक है, लेकिन उससे किसी किस्म की कोई ऐसी चीज हो गई जो आपके मिजाज के खिलाफ है, आपके मिजाज के खिलाफ है, यहां पर गुस्सा आता है, ठीक है। तो जो मिजाज के खिलाफ बात होती है ना उसी को खता भी कहते हैं। तो आप उसको गलत समझते हैं, खता समझते हैं, आप कहें कि भी मैंने भी तो अल्लाह ताला के साथ बहुत सारी खताएं करी है ना, ठीक है, तो जिस तरह मैं चाहता हूँ चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी खताओं को माफ कर दे, उसी तरह से मुझे भी इस खता को माफ कर देना चाहिए, तो इस तरह से सोचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जब जिस वक्त ऐसे गुस्से के मरीज को गुस्सा आ रहा होता है ना तो सोच समझ की तो सलाहियत ही उसकी सल्ब हो जाती है उस वक्त। अब वो कहाँ से सोचेगा समझेगा और कहाँ से उसको ये बात याद आएगी कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन अगर वो रिमाइंडर्स उसको मिलते रहे, रिमाइंडर्स उसको मिलते रहे ना कि ये गुस्सा गलत चीज है और गुस्से का इलाज जो है वो इस तरह से सोचना है और जगह को तब्दील कर लेना है, तो अल्लाह ताला ने हमारा निजाम ऐसा बनाया है कि ये जो रिमाइंडर्स है ना ये अपना रास्ता बना लेते हैं हमारे अंदर। टाइम लगता है इनको लेकिन बिल आखिर ये थोड़ा थोड़ा अंदर दाखिल होते होते ये इतना बन जाते हैं अपने अंदर, हमारे अंदर इतनी जगह बना लेते हैं कि फिर गुस्से की कैफियत में भी ऐसे शख्स को ये चीजें याद आ जाती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे ही मुझे भी चाहिए कि मैं उस शख्स को कसूर माफ कर दूं और जुबान से आऊज बिल्ला बार बार पढ़े और पानी पी ले या वजू कर ले, इससे गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये भी टिप्स हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने भी बताई हैं और मशाइख ने मजीद इसके ऊपर कि पानी पी ले, ठंडा पानी पी ले, सही, वजू कर लेना, फिर जब अकल ठिकाने में आ जाए तो उस वक्त अगर उस कसूर पर सजा देना मुनासिब मालूम हो, मसलन सजा देने में उस कसूरवार की भलाई है, जैसे अपनी औलाद है कि उसकी इसलाह जरूरी है, या सजा देने में दूसरी की भलाई है जैसे उस शख्स ने किसी पर जुल्म किया था और मजलूम की मदद करना और उसका बदला लेना जरूरी है, तो पहले खूब समझ ले कि शरीयत के मुताबिक इस गलती की कितनी सजा होनी चाहिए, फिर उसी कदर सजा दे दे। चंद रोज इस तरह गुस्सा रोकने से खुद ब खुद काबू आ जाएगा और तेजी नहीं रहेगी, बुग़्ज़ व अदावत भी इसी गुस्से से पैदा हो जाती है, जब गुस्से की इसलाह हो जाएगी तो बुग़्ज़ भी दिल से निकल जाएगा, ठीक है। यानी एक चीज के ऊपर इंसान जब लग जाता है ना, उसको सोचता है कि पहली बात तो उसको मानता है कि ये गलत है, इब्तिदा मानने से होती है, ठीक है ना, गलत को गलत मानना और सही को सही मानना, यहां से इब्तिदा होती है, ठीक है। इब्तिदा जो है ना वो क्या कहते हैं, करने से इब्तिदा नहीं होती कि कोई काम आप करना शुरू, मिसाल के तौर पर आपने अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं किया, आपने जो है ना वो गुस्से को जो है वो गलत तस्लीम ही नहीं किया कि ये गलत चीज होती है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने जो है ना वो गुस्से को खत्म करने की एफर्ट शुरू कर दी। ठीक है कि कोई कोई जैसे पानी पीना शुरू कर दिया वगैरह, मतलब वैसे तो ऐसा इंसान कर नहीं सकता कि किसी चीज को गलत माने ही नहीं और उसका इलाज शुरू कर दे, लेकिन कभी कभी हमसे इस किस्म की गलती हो जाती है कि हम अपनी गलती को माने बगैर जो है ना वो उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है तो ऐसे इलाज नहीं होता, पहले गलती को गलती मानना जरूरी होता है। तो मानने के बाद फिर उसके बाद इंसान तदाबीर के ऊपर अमल करता है, तो उसको जो है ना वो तदरीजन उसके अंदर तब्दीली आनी शुरू होती है, उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। माने बगैर इलाज करना भी मुमकिन होता है, लेकिन उससे इलाज जो है ना वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस डॉक्टर को जो है वो अच्छा डॉक्टर नहीं मानते और उस दवाई के बारे में आप कन्विंस नहीं है कि ये अच्छी दवाई है, लेकिन आप जो है वो किसी के प्रेशर की वजह से उस दवाई को खाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है तो अल्लाह ताला ने हमारा ऐसा निज़ाम बनाया है कि सिर्फ ये नहीं है कि दवाई खाने से अब हमारे यानी सोच के बगैर ही वो दवाई अंदर जा करके जो है ना वो चीर फाड़ करके हमें सब ठीक ठाक कर देगी, काट पीट करके हमें अंदर से ठीक कर देगी, हमारी बुराई बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं, बल्कि हमारा हमारी सोच जो है ना, हमारी नफ्सियात जो होती है वो उस दवाई के हमारे अंदर जा करके सही से हमारा इलाज करने में बहुत कलीदी हैसियत रखती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है कि हमारी सोच उसके बारे में क्या है। ठीक है तो अगर हमारी सोच उसके खिलाफ है ना, तो अल्लाह ताला का निजाम ऐसा है कि हमारी सोच की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उस दवाई के असर को रोक देते हैं, उस दवाई के असर को रोक देते हैं या रोकने की कोशिश कम से कम जरूर करते हैं। तो वो दवाई जो है ना वो हमारे अंदर जाकर के खुल के काम नहीं कर सकती क्योंकि हमारी सोच उसके खिलाफ है। ठीक है सोच से हमारे जिस्म में केमिकल्स रिलीज होते हैं, इस बात को याद रखें, सोच से केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है हमारे बदन के अंदर अल्लाह ताला ने ग्लैंड्स बनाए, इनको ग्लैंड्स कहते हैं जहां से वो केमिकल्स निकलते हैं। ठीक है और ये ग्लैंड्स जो होते हैं ना इंसान की नफ्सियात से कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है अगर आपकी सोच मवाफिक होगी कि हाँ भाई डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और डॉक्टर साहब की दी हुई जो दवाई है ना ये अच्छी होती है दवाई, इससे मुझे फायदा होगा, गुमान अच्छा रखें डॉक्टर साहब के बारे में और फिर असल डॉक्टर साहब के बारे में भी गुमान रखें तो और भी अच्छी बात है, यानी अल्लाह ताला। ठीक है कि असल में शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है और अल्लाह ताला जो है वो मुझे शिफा देने के ऊपर कादिर है, तो असल डॉक्टर और जो सामने नकल डॉक्टर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, यानी असल में तो शिफा अल्लाह ने देनी है, ये नकल डॉक्टर से मुराद ये नहीं कि वो कोई फेक डॉक्टर है, बल्कि ये गोया के वास्ता है, जरिया है उस शिफा का। ठीक है तो आपके जिस्म में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं कि जो कि उस दवा को खाने के वक्त जो है ना फिर उसकी उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनते। ठीक है यही मामला जो है ना वो रूहानी बीमारियों के इलाज का भी है कि जब हम शेख साहब के पास जाते हैं या हम जो है वो कोई यानी जिक्र इस्तेमाल कर रहे होते हैं या नबी अलैहिस्सलाम की बताई हुई कोई तदबीर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगर हम जितना हमारा पुख्ता यकीन होता है, एतमाद होता है डॉक्टर के ऊपर और डॉक्टर की बताई हुई इलाज के ऊपर, जितना पुख्ता एतमाद होता है ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो उन्होंने इलाज बताया होता है उस इलाज का असर हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है, वो रुकावट नहीं बनता बल्कि उसका असर होना शुरू हो जाता है। ठीक है यही मामला रूहानी बीमारियों का भी है और यही मामला जिस्मानी बीमारियों का भी है। अब आगे आखिर में जो उन्होंने बुगस का जिक्र किया है, तो बुग़्ज़ के लिए एक दूसरा लफ्ज़ कीने का भी इस्तेमाल किया जाता है, बुग़्ज़ और कीना। ये कीना जो होता है ना ये एक छुपे हुए गुस्से को कहते हैं, छुपा हुआ गुस्सा, यानी वो जो कि सामने से बाहर से नजर नहीं आ रहा बल्कि अंदर अंदर जो है ना वो इंसान के मौजूद है। ये अमूमी तौर पर जो कमजोर लोग होते हैं ना, जो कि अपने गुस्से का जाहिरी तौर पर इजहार नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते अपना गुस्सा, ना जुबान से कुछ कह सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना चेहरे को जो है वो यानी तने हुए चेहरे से भी तो इजहार होता है ना गुस्से का, ये इतना कमजोर है कि किसी के सामने जिसके जिसके ऊपर इसको गुस्सा आ रहा है ये कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके गुस्सा है। तो उसके लिए जो लफ्ज है उर्दू जुबान के अंदर वो बुग़्ज़ और कीना है, ठीक है। तो बुग़्ज़ और कीना जो है ना, ये भी गुस्से के इलाज में इसका भी इलाज दाखिल है, ठीक है। तो दोनों चीजें फिर इंसान की खत्म हो जाती हैं, जाहिरी गुस्सा भी खत्म हो जाता है और बातनी गुस्सा भी खत्म हो जाता है। अलबत्ता जैसे कि बस एक अहम बात यहाँ पे कहे बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो ये है कि शरीयत के लिए गुस्सा करना ये जरूरी है, ठीक है। शरीयत के अहकामात जब टूट रहे हों और उस वक्त इंसान को गुस्सा ना आए, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा हो और इंसान को गुस्सा ना आए, जैसे अभी बहुत से एक तो हो रहा है, दूसरा ये कि वीडियोस भी आ रही हैं और लोग वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना, कि बच्चों के साथ क्या बच्चों का हाल हो रहा है, बड़ों का हाल हो रहा है, कितनी लाशें उठ रही हैं, कैसे लोगों के घर जो है वो यानी पूरे पूरे जो है वो उन रिश्तेदार दुनिया से चले गए, है ना। अब इसको देख करके या इसके बारे में सुन करके अगर हमें गुस्सा ना आए उन लोगों के ऊपर जो कि ये काम कर रहे हैं और जो कि इन कामों में उनकी मदद कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर गुस्सा ना आए, तो ये इंतहाई बुरी रूहानी कैफियत है, ठीक है। और इसके लिए जो है वो हदीस मुबारका के अंदर द यूस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बेगैरत जिसको उर्दू में कहते हैं, है ना, हमारे अंदर से ईमानी गैरत निकल गई, हमारे अंदर से इंसानी गैरत निकल गई, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान का बच्चा मरे तो हमें अफसोस होना चाहिए, नहीं, किसी गैर मुस्लिम के ऊपर भी जुर्म हो रहा हो तो उसके ऊपर भी हमें गुस्सा और अफसोस करने की जरूरत है। तो इंसानी गैरत, ईमानी गैरत ये खत्म हो गई। उसी तरह किसी मर्द की औरत जो है वो बेपर्दा फिर रही हो या गैर महरम मर्दों के साथ हंसी मजाक करती हो और उस मर्द को गुस्सा ना आए, तो ये उसकी बेगैरती की अलामत है और ये दयूसियत की अलामत है, जिससे कि अल्लाह ताला को नफरत है इस वाली कैफियत से, ठीक है। तो जो खवातीन पर्दा नहीं करती या गैर महरम मर्दों से जो है वो बिला जरूरत तकल्लुम करती हैं और हंसी मजाक करती हैं, तो याद रखें कि उनके शौहर अगर गुस्सा कर रहे हैं ना तो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि वो गुस्सा कर रहे हैं, उसके ऊपर आप गुस्सा ना करिएगा वरना आपका उल्टा अंजाम ना हो जाए कहीं, ठीक है भाई। अपना खुद इंसान से गुनाह हो रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हो रही है, तो बजाय इसके कि वो शख्स जो कि आपके नाफरमानी के ऊपर गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाए, या ये कि अपनी नाफरमानी की इसलाह करें, अपने गुनाह की इसलाह करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह मैं पर्दा नहीं कर पा रही, मैं कमजोर हूं, राइट, आप मेरी मदद फरमा दीजिए, आप जो है वो मुझे शरीयत के उसूलों के ऊपर चला दीजिए, आप मुझे ऐसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। ये दुआ मांगने के बजाय जो है वो जो भाई अगर गुस्सा कर रहा है या शौहर अगर गुस्सा कर रहा है, और उसका फर्ज है गुस्सा करना, उसका फर्ज है ये गुस्सा करना, अगर वो नहीं गुस्सा करेगा तो वो अपना फर्ज अंजाम नहीं दे रहा है, तो उल्टा आप उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू हो जाए, यानी एक गुना पहले कर रही थी अब उसके ऊपर डबल गुना, दूसरा भी गुना करना शुरू हो गया, ठीक है। और हर गुना के साथ अल्लाह ताला का अजाब चिमटा हुआ है, ये याद रखें, गुना जो है ना कोई एक लफ्ज का नाम नहीं है खाली, बल्कि ये अल्लाह का अजाब, इसका मतलब होता है अल्लाह का अजाब, ठीक है, और गुनाह के साथ अल्लाह का अजाब चिपका हुआ होता है, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो इस वजह से बस अल्लाह ताला से इंसान दुआ करे, ठीक है, एक फर्ज को अदा नहीं कर रही तो बेशक तहज्जुद में उठ करके, अच्छा वैसे तो जो फराइज पूरे नहीं करता उसके नवाफिल कबूल नहीं होते, ये 100% पक्का उसूल है, जो फराइज पूरे नहीं करता उसके नवाफिल कबूल नहीं होते, लेकिन अगर वो नफिल पढ़ के दुआ मांगे कि ए अल्लाह मुझसे उस फर्ज की जो कोताही हो रही है आप मुझे मदद कर, मेरी मदद फरमा दीजिए, तहज्जुद करके दुआ मांगे, फर्ज नमाजों के बाद दुआ मांगे, ए अल्लाह आप मेरे लिए पर्दा करना आसान फरमा दें, आप मेरे लिए जो है वो शरीयत के उसूलों पर चलना आसान फरमा दें, फिर बहुत अच्छा है, फिर तहज्जुद पढ़ना अच्छा है, ठीक है ना। वरना कोई ये समझे कि मैं तहज्जुद पढ़ के अल्लाह को राजी कर लूंगी और पर्दा नहीं करूंगी, पर्दा नहीं करूंगी। ऐसी औरत की तहज्जुद उसके मुंह पे मार दी जाएगी, ऐसी औरत की तहज्जुद है उसके मुंह पे मार दी जाएंगी जो ये समझती है कि मैं पर्दा नहीं करती, करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तहज्जुद तो पढ़ूंगी मैं जरूर से। लानत है ऐसी तहज्जुद के ऊपर। ठीक है, तो समझ में आ गया। एक तहज्जुद होती है जिसमें उठ करके ये दुआ मांगी जाए कि ए अल्लाह मेरे लिए आपके हुक्मों पे चलना आप आसान फरमा दीजिए, पर्दा करना आसान फरमा दीजिए, सच बोलना आसान फरमा दीजिए, वो तहज्जुद कबूल है। ठीक है, लेकिन ये दूसरी वाली तहज्जुद कबूल नहीं है। आगे चलें। हसद और उसका इलाज। किसी को खाता पीता या फलता फूलता देखकर दिल में जलना और उस शख्स की नेमत के जवाल से खुश होना, उसको हसद कहते हैं। नेमत के जवाल क्या मतलब कि उसके पास से नेमत छिन जाए, ये दिल में तमन्ना रखना, इसको हसद कहते हैं। ये बहुत बुरी चीज है, इसमें गुनाह भी है। ऐसे शख्स की सारी जिंदगी तलखी में गुजरती है, गर्ज उसकी दुनिया और दीन दोनों बेलज्जत हैं, इसलिए इस आफत से निकलने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। यानी क्या फरमा रहे हैं कि जो शख्स हसद में मुब्तला होता है ना किसी के बारे में, तो वो खुद इस हसद की आग में जल रहा होता है और ये जलता ही रहता है जब तक ये हसद करना छोड़ ना दे। ठीक है, तो वो बंदा तो अल्लाह की नेमत में जिंदगी गुजार रहा है, वो तो उस नेमत को एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना, उसकी जिंदगी तो अच्छी है, लेकिन जो हसद करने वाला है उससे ये जला चला जा रहा है, ये कुढ़ा चला जा रहा है। तो कौन ज्यादा मुसीबत में हुआ? वो मुसीबत में हुआ नहीं, वो तो नेमत एंजॉय कर रहा है, उसको तो नेमत मिली हुई है, लेकिन हासिद जो है ना ये ना नुकसान कर रहा है। तो इसका इलाज ये है कि पहले ये सोचे कि मेरे हसद से मेरा ही नुकसान है, कि मेरी नेकियां बर्बाद हो रही हैं, उसका क्या नुकसान है, क्योंकि हदीस में है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा लेती है। इसकी वजह यह है कि हसद करने वाला गोया अल्लाह ताला पर एतराज कर रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हसद करने वाला अल्लाह ताला पर एतराज कर रहा है कि फुला शख्स उस नेमत के लायक नहीं था, उसको नेमत क्यों दे दी, गोया वो अल्लाह ताला का मुकाबला कर रहा है। गर्ज ये कि हसद बहुत बड़ा गुनाह है और हासिद का तकलीफ में रहना जाहिर है कि वो हमेशा रंजो गम में रहता है, और जिस पर हसद किया है उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हसद से वो नेमत खत्म नहीं होगी बल्कि उसको ये फायदा होगा कि इस हसद करने वाले की नेकियां इसके पास चली जाएंगी। ठीक है, यानी जो हासिद होता है तो उसकी नेकियां जो है ना वो महसूद के पास चली जाती हैं जिससे वो हसद कर रहा है। ये सोच लेने के बाद अपने दिल पर जबर करके जिस शख्स पर हसद पैदा हुआ है जुबान से दूसरों के सामने उसकी तारीफ करो और ये कहो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसके पास ऐसी ऐसी नेमतें हैं, अल्लाह ताला उसको मजीद दे, और अगर उस शख्स से मुलाकात हो तो उसका एहतराम करो और उसके साथ तवाज़ो से पेश आओ। शुरू शुरू में ऐसे बर्ताव से नफ्स को बहुत तकलीफ होगी मगर रफ्ता रफ्ता आसानी हो जाएगी और हसद जाता रहेगा। ठीक है, जिसके साथ हसद है तो उसके लिए दुआ करना, उसके अल्लाह उसकी नेमतों को और बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हसद जो है ना वो जाता रहेगा, अगरचे कि बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जहन्नुम की जो जो सख्ती है, अजाब है, वो इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, अच्छा एक और चीज ये कि हसद हमें पैदा क्यों हो जाता है हर वक्त, है ना, मतलब लेफ्ट एंड राइट, कभी इससे हसद, कभी उससे हसद, कभी उससे हसद। ठीक है, ये तो हसद पैदा होने के बाद की बात हो रही है ना कि भाई उसके लिए दुआ करना शुरू कर दो और उसके लिए जो है वो तवाजो से पेश आओ, उससे एहतराम से पेश आओ। भाई निप द ईविल इन द बड, क्या कहते हैं उसको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यहाँ पर तो हजरत जो बता रहे हैं वो तो क्योर बता रहे हैं ना, इलाज बता रहे हैं ना, लेकिन परहेज इलाज से बेहतर है। तो परहेज कैसे करें हसद से कि हसद पैदा ही ना हो हमारे अंदर। ठीक है, तो ये चलें आप बता दें कि हसद हमारे अंदर पैदा ही ना हुआ करे लोगों के बारे में, तो इससे परहेज फिर कैसे करना चाहिए, तो लोबा से कभी कभी पूछ लेना चाहिए। आज तो आपने एक सवाल भी नहीं करके दिया पूरी क्लास में, कभी होता है कि इतने सवाल होते हैं कि क्लास ही आगे नहीं बढ़ पाती, और आज तो एक भी सवाल नहीं था। तो चलें हमारी सवाल का जवाब दे दें कि हसद को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन। कि क्योर की नौबत ही ना आए, जरूरत ही ना पड़े क्योर की। जी क्लास का टाइम भी खत्म हो गया, तो आपके जवाब के साथ ही फिर हम इस क्लास को रैप अप कर देंगे और फिर अगली क्लास भी शुरू करनी है। दुआ करके, दुआ तो हर चीज के लिए करनी होती है, लेकिन यहाँ पर तो दवा की बात हो रही है ना, इसबाब के अख्तियार करने चाहिए। हर वक्त दूसरों को सोचते रहने से हसद पैदा होता है, इसलिए अपनी फिक्र करनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, हम अपनी नेमतों पर फोकस करें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे जवाब है। यहीं पर हम रोकते हैं क्लास को कि भाई आप दूसरों के ऊपर फोकस क्यों रहती हैं, ठीक है ना? अल्लाह पे फोकस करें और अल्लाह की नेमतें जो हमारे पास हैं उसके ऊपर फोकस करें। अपनी नेमतों को संभालने पे हमारी हमारा फोकस होना चाहिए, हमारी तवज्जो होना चाहिए, ठीक है? जिसकी तवज्जो अल्लाह पर हो गई और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर हो गई ना, वो फिर दूसरों से हसद नहीं कर सकता। उसको उसके पास टाइम ही नहीं है दूसरों के ऊपर फोकस करने का, सोचने का, है ना? तो बस ये गुर है, ये प्रिवेंशन है, ताकि फिर आगे क्योर की जरूरत ही ना पड़े। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर